नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ उत्तरा गणेशन। उत्तरा जी, आपका स्वागत है।
धन्यवाद जया।
आज का दिन अगर हम कहें इंडिया के लिए मोस्ट प्रोडक्टिव कह सकते हैं, चाहे आप पैरा एथलेटिक्स की बात कर ले या फिर हम क्रिकेट में देखें और भी इवेंट्स की बात।
बिल्कुल, आज वाकई बहुत कम ऐसा होता है कि हर खेल में आपको अच्छी खबर सुनने को मिले भारत में, और उस हिसाब से देखा जाए तो वाकई बहुत अच्छा दिन है, चाहे वो क्रिकेट हो, वेट लिफ्टिंग हो, पैरा एथलेटिक्स हो, हर तरफ से। तो उम्मीद है कि ये आगे ऐसे ही कंटिन्यू और होता रहेगा।
जी, तो सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 7वें दिन भारतीय एथलीट्स ने 2 स्वर्ण सहित 4 पदक अपने नाम किए। मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता, नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए। भारत ने वेस्टइंडीज के साथ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 5 विकेट पर 448 रन बनाए, 286 रन की बड़ी बढ़त हासिल की। और महिला क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। शुरुआत विश्व पैरा एथलेटिक्स से, जो कि नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रहा है, जहां 7वें दिन आज भारतीय एथलीट्स ने 2 स्वर्ण सहित 4 पदक अपने नाम किए हैं। पैरा हाई जंपर 2 बार पैरालंपिक पदक विजेता और 3 बार विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता निषाद कुमार ने नया एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए हाई जंप T47 में स्वर्ण पदक जीता। वहीं सिमरन शर्मा ने T12 100 मीटर में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके अलावा प्रीति पाल ने 200 मीटर T35 में और प्रदीप कुमार डिस्कस थ्रो F64 में कांस्य पदक जीता। भारत अब 6 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ शीर्ष 5 में शामिल हो गया है।
बिल्कुल, और आज का दिन वाकई काफी प्रोडक्टिव था। उम्मीद बिल्कुल की जा रही थी, बल्कि जितनी उम्मीद थी उससे शायद एकाध मेडल, एकाध गोल्ड कमी आया है, क्योंकि प्रीति पाल से ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो गोल्ड जीतेंगी, पर हो नहीं पाया। बहरहाल, बाकी जो मेडल आए हैं, ज्यादा अच्छी चीज ये है कि वो सिर्फ मेडल नहीं आए हैं, वो साथ में अपने साथ नए रिकॉर्ड्स भी लाए हैं। जो निषाद का जंप था 2.14 मीटर्स का, वो एक नया कॉन्टिनेंटल एशियन रिकॉर्ड है, और कोशिश तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी की थी पर हो नहीं पाया उनसे, ये अलग बात है। लेकिन जिसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो जरूर ब्रॉन्ज पे पीछे रह गए थे। और सिमरन ने तो खैर अपना पर्सनल बेस्ट मारा, और पहली बारी वो 12 सेकंड से नीचे, उन्होंने जो 12 सेकंड का बैरियर एक माना जाता है उसको तोड़ा है, उससे नीचे उन्होंने फिनिश किया है। तो वाकई बहुत अच्छा दिन रहा है, और 2 दिन और बचे हैं। उम्मीद यही की जा रही है, जैसा कि इवेंट शुरू होने से पहले लगातार बोला जा रहा था कि पिछली बार 19 मेडल थे, उससे बेहतर इस बार ही प्रदर्शन होगा। तो अभी 4 मेडल बाकी हैं उसको बराबर करने के लिए। उम्मीद यही है कि अगले 2 दिन में 4 या 5 मेडल आएंगे, तो जो टोटल है भारत का वो 20 का आंकड़ा टच कर पाएगा या 20 से ऊपर भी जाएगा, और शायद ये सबसे सक्सेसफुल हो पाएंगे हमारे लिए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप्स।
बिल्कुल, भारतीय फैंस को भी अपने एथलीट्स पर पूरा भरोसा है। स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने नॉर्वे में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम और कुल भारोत्तोलन में 199 किलोग्राम के साथ नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए। यह उनका 3रा विश्व चैंपियनशिप पदक है। इससे पहले चानू वर्ष 2017 की विश्व चैंपियन और 2022 की रजत पदक विजेता है। वर्ष 2021 में टोक्यो ओलंपिक में चानू ने 115 किलोग्राम भार वर्ग उठाया था, वहां भी उन्होंने रजत पदक जीता था। प्रतियोगिता में उत्तर कोरिया की री सोंग गम ने 213 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण, और थाईलैंड की थान्या थॉन सुकचारोन ने 198 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। मीराबाई चानू से हमें जिस तरह की उम्मीदें थी,
जी,
क्या वो खरी उतर पाई उसमें?
बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वो बहुत खुश होंगी क्योंकि पिछले करीब 2-3 साल से उस तरह से उनका प्रदर्शन नहीं आ पा रहा था जिसकी हमें उनसे उम्मीद है, जिसकी उनको खुद को भी खुद से अपने आप से उम्मीद है,
बिल्कुल
और उनका वेट कैटेगरी भी चेंज हुआ है तो वो भी थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। 1 किलो बहुत कम लगता है बॉडी वेट के हिसाब से, लेकिन जब आप 1 किलो कम करते हैं, 49 से 48 में आते हैं, तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। आप कितना वजन उठा पाते हैं, आपकी बॉडी का वेट स्ट्रक्चर किस तरह का है, फैट कितना है, मसल्स कितनी हैं, और किस आपके ओपोनेंट्स किस तरह के हैं, क्योंकि कैटेगरी जब बदलती है तो ओपोनेंट्स भी चेंज हो जाते हैं कई बार। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए वाकई बहुत बड़ी बात है। और 31 साल की हैं मीरा भाई, इस
जी।
उम्र में आके अपने आप को दोबारा से प्रूव करना अगले साल के एशियन गेम्स से पहले मुझे लगता है उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा, क्योंकि पिछले एशियन गेम्स में वो मेडल से चूक गई थी, पेरिस में वो मेडल से चूक गई थी। एक तरह से टोक्यो और 22 का अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप छोड़ दिया जाए तो उसके बाद पिछले 3 साल से लगातार वो स्ट्रगल कर रही हैं, कभी
जी
इंजरीज के साथ, कभी परफॉर्मेंस के साथ, कभी ट्रेनिंग के साथ। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जितना उन्होंने उठाया है, हालांकि कोच जो है उनके विजय शर्मा, उन्होंने कहा था कि वो 200 का आंकड़ा टच करने की कोशिश करेंगी, पर 199 बहुत आसपास है उसके। और जैसे मैंने कहा कि 1 साल से कम टाइम बचा है, और अगले साल के एशियन गेम्स के लिए मुझे लगता है कि इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी उनकी तैयारियों की।
जी हमें ये भी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उनके में आया होगा इस वापसी के
बिल्कुल,
साथ।
क्योंकि अगर हम टॉप के देखा जाए तो अगर चाइना की जो है उनको छोड़ दिया जाए, जो चैंपियन है, ओलंपिक चैंपियन, उनको छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जो टॉप के लिफ्टर्स हैं इस कैटेगरी में वो एशिया से ही हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए जो टॉप 5 या 6 थे यहाँ पे कॉम्पिटिशन में, वो सारे एशियन कंट्रीज से ही थे। उस लिहाज से मुझे लगता है एशियन गेम्स के लिए बहुत बड़ी एक फिजिकली भी, मेंटली भी, रिजल्ट वाइज भी, हर तरह से उनके लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा।
जी अब बात क्रिकेट की। अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने आज पहली पारी में 5 विकेट पर 448 रन बनाए। ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा और लोकेश राहुल की शतकीय पारियों से टीम ने वेस्टइंडीज पर 286 रन की बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। वेस्टइंडीज की पहली पारी कल 162 रन पर सिमटी थी। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि दिन का खेल खत्म होने तक क्या हाल था।
भारत ने 5 विकेट शेष रहते 286 रन की बढ़त के साथ मैच पर अपना शिकंजा कस लिया है। दिन का खेल खत्म होने तक जडेजा के साथ वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर मौजूद थे। 24 साल के जुरेल ने भारतीय पारी के 116वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज के खिलाफ चौके के साथ 190 गेंद में टेस्ट करियर का अपना पहला शतक पूरा किया। तो वहीं शानदार लय में चल रहे जडेजा ने इसके 10 ओवर बाद वारिकन के खिलाफ 1 रन चुराकर 168 गेंद में अपना छठा टेस्ट शतक पूरा किया। दोनों ने दिन के दूसरे और तीसरे सत्र में पूरी तरह से हावी होते हुए 5वें विकेट के लिए 206 रन की साझेदारी कर मैच में वेस्टइंडीज के लिए वापसी के रास्ते को लगभग बंद कर दिया। जुरेल ने शतक पूरा करने के बाद आक्रामक रुख अपनाया। वो खारे पियरे की गेंद पर विकेट कीपर शाई होप को कैच देकर आउट हुए। इधर पियरे के टेस्ट करियर का ये पहला विकेट है। इससे पहले कप्तान शुभमन गिल 100 गेंद पर 50 रन और लोकेश राहुल 197 गेंद पर 100 रन बनाकर आउट हुए। राहुल ने घरेलू सरजमी पर 9 साल के सूखे को खत्म करते हुए अपना दूसरा और करियर का 11वां टेस्ट शतक लगाया। दूसरे सत्र के शुरुआती ओवर में ही राहुल के आउट होने के बाद जुरेल ने भारतीय पारी का पहला छक्का लगाया। इसके कुछ देर बाद जडेजा ने जोमेल वारकन के खिलाफ 2 छक्के जड़े। भारतीय टीम ने दिन की शुरुआत 2 विकेट पर 121 रन से आगे की थी। राहुल ने कप्तान गिल के साथ 3रे विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी कर भारत को बढ़त दिला दी। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने शुरुआती सत्र में सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के सतर्क रवैये के कारण टीम को सिर्फ 1 सफलता मिली। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
जैसा कि हमने रिपोर्ट में सुना, भारतीय टीम जिस तरह से पकड़ बनाए हुए हैं और वेस्टइंडीज पे जो उन्होंने अपना शिकंजा कस दिया है, क्या वो वापसी कर पाएगी?
देखिए मुश्किल है बिल्कुल, हालांकि खेल में मैं कभी भी ये कहना पसंद नहीं करती हूँ कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मुमकिन या नामुमकिन कुछ नहीं होता है, पर मुश्किल बहुत है जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी है और जिस तरह से पहली इनिंग्स में उनके उनकी बल्लेबाजी दिखी हमें बहुत ही हल्की थी, और हमारी गेंदबाजी जिस तरह की है तो कमबैक करना तो बहुत मुश्किल लग रहा है यहाँ पे। और 5 दिन तो मैच बिल्कुल नहीं चलता दिख रहा, आज दूसरा ही दिन था, अभी 3 दिन बचे हैं, मुझे नहीं लगता 5 दिन जाएगा ये मैच, कल तीसरे दिन भी ये मैच खत्म हो सकता है। इस पे डिपेंड करता है कि भारत सामने कितने रन का लक्ष्य रखता है उनके, या कितना खुद और आगे बैटिंग करना पसंद करता है, पर हो सकता है कल खत्म हो जाए, हो सकता है चौथे दिन खत्म हो जाए, पर 5वें दिन तो नहीं जाता दिख रहा है। और थोड़ा सा वेस्ट इंडीज को ये सोचने की जरूरत है कि किस तरह से चीजें की जाएं, क्योंकि ये बहुत लंबी सीरीज नहीं है, 2 ही टेस्ट मैच हैं, तो अगर ये मैच वो हारते हैं तो कमबैक टाइप का कुछ बचेगा नहीं सीरीज में।
जी, अब बढ़ते हैं गुवाहाटी की ओर, जहां आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में आज इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हरा कर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 69 रन पर आउट करके ही परिणाम लगभग तय कर दिया था। लिंसे स्मिथ ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए। स्मिथ के अलावा कप्तान नेट साइवरब्रंट, सोफी एक्लस्टोन और चार्ली डीन ने 2-2 विकेट झटके। यह दक्षिण अफ्रीका का महिला विश्व कप इतिहास में दूसरा न्यूनतम स्कोर था। जवाब में इंग्लैंड ने 14 ओवर और 1 गेंद में लक्ष्य हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज एमी जोन्स ने 40 और टैमी ब्यूमोंट ने 21 रन का योगदान किया। जिस तरह का मौसम गुवाहाटी में देखा जा रहा है, पिच गीली है, क्या उसका कुछ असर हुआ है?
मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो भी इस तरह से कोलैप्स नहीं होता है, ये बहुत ही रेयर है, और ये हमें मानना पड़ेगा कि ये वाकई रेयर है। सिर्फ इसलिए नहीं कि 70 से कम रन में एक 50 ओवर मैच में टीम हार गई है, बल्कि साउथ अफ्रीका की जिस तरह की टीम है उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती है। ये कह सकते हैं कि एक ऑफ डे रहा है पूरी टीम का, क्योंकि एक खिलाड़ी को छोड़ के किसी कोई भी डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाया उनकी बल्लेबाजी में। तो पर जिस तरह की उनकी टीम है साउथ अफ्रीका की, मुझे नहीं लगता कि ये उसको उनको जज करने का या इस वर्ल्ड कप में वो कहां तक आगे जाएंगे वो डिसाइड करने का सही तरीका होगा, और शायद एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल भी होगा उनके लिए। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें से 7 ऑस्ट्रेलिया और 4 इंग्लैंड जीती है, तो वो इसीलिए उन दोनों को विश्व का सबसे मजबूत क्रिकेटिंग नेशन माना जाता है विमेंस क्रिकेट में एटलीस्ट। और आज इंग्लैंड ने ये प्रूव किया है कि अपनी दावेदारी बहुत मजबूती से पेश की है, कि पिछली बारी वो फाइनल में हार गए थे, इस बारी वो यहाँ पे जीतने के लिए आए हैं। हालांकि बहुत ही शुरुआती टाइम है, अभी एक एक मैच ही खेले हैं सबने, पर आपको एक आइडिया लग गया है कि कौन सी टीम कितनी सीरियसली है इस वक्त इस बारी टाइटल जीतने के लिए, जिसमें भारत भी शामिल है।
जी। भारतीय गोल्फर गगनजीत भुल्लर आज जकार्ता इंटरनेशनल चैंपियनशिप के शुरुआती 2 दौर में 1 समान 5 अंडर 65 का कार्ड खेलकर दूसरे स्थान पर रहे। भुल्लर अब थाईलैंड के पावीत टांगकमलोर प्रासर्ट से सिर्फ 1 शॉट पीछे हैं। भुल्लर के एशियन टूर पर कुल 11 खिताब हैं, जिनमें से 5 जीत उन्होंने इंडोनेशिया में हासिल की। अब वह इस देश में अपनी 6ठी जीत की तलाश में हैं। अन्य भारतीयों में एस चिंकारंगपा ने पहले राउंड में 69 और दूसरे राउंड में 67 का स्कोर किया, वह संयुक्त रूप से 26वें स्थान पर हैं। मनीष सुरेश कुमार और कीर्तिवासन सुरेश आज फेनिस्टा ओपन राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल जीतने के बाद पुरुष सिंगल्स फाइनल में आमने सामने होंगे, जबकि महिला वर्ग का फाइनल वैष्णवी अटकर और आकांक्षा निटोरे के बीच होगा। BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 6 से 19 अक्टूबर तक गुवाहाटी में होगा। भारत 17 साल के लंबे अंतराल के बाद इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। भारत ने इससे पहले वर्ष 2008 में पुणे में इसकी मेजबानी की थी। उस समय जब इसकी मेजबानी हुई थी सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहा जाए देखने को मिला था, क्या उस इतिहास को वापस दोहरा पाएगा भारत?
उम्मीद यही है, बाकी जैसे मैंने कहा स्पोर्ट्स में वहां पे पता चलेगा, हालांकि जो अगली जनरेशन है हमारी उससे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं।
जी बिल्कुल। श्रोताओं, समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का, कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ, तो इजाजत दीजिए, नमस्कार।